we welcome all the devotees in today's program.
Oh. Guru Dev, 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 Guru Dev,
सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः ओम अज्ञान्त मिरांधस्य चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नाम्ने गौरतुषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी यशभानु सुते देवी प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा सो वंस अगेन वी वुड लाइक टू वेलकम ऑल द डिवोटीज टू दिस सत्संग प्रोग्राम एंड ऑन one of the most auspicious day. First of all, I would like to say blessings of all the assembled devotees here and also would like to express my gratitude to Gaurav Narasimha Prabhu for giving me this opportunity, and also to all the senior assembled devotees here. Thank you, Prashant Prabhu. It is very tough job, I know, which you did today. So, I will try to speak in English and Hindi both. I don't know how much. Indeed, today and only for 2011, tomorrow is very auspicious day. Anyone knows why, how? Yeah. Today is supposed to be Makara Sankranti, but it is tomorrow only for 2011. Otherwise, this is one of the event in Indian Vedic calendar which is fixed also on a date, actually, which, you know, falls on the same day as 14th of January. Makara Sankranti. So it is tomorrow, actually. For generally it is on 14th of January. जो मकर संक्रांति का जो त्योहार है वो आज के दिन होता है हमेशा, लेकिन आज जो ये वर्ष है 2011, इसमें ये कल पड़ रहा है. तो कई त्योहार ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर आप वैष्णव कैलेंडर देखेंगे और दूसरे कैलेंडर देखेंगे जो बाजार में मिलते हैं, तो बहुत सारे ऐसे उत्सव हैं जो वैष्णव कैलेंडर में होते हैं और उस कैलेंडर में नहीं होते, और बहुत सारे ऐसे उत्सव होते हैं जो उस कैलेंडर में है लेकिन वैष्णव कैलेंडर में नहीं होते. तो मकर संक्रांति का त्यौहार हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस रखता है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मकर संक्रांति फॉर अस? कोई जानता है? कोई कहना चाहेगा? Yes, yes. That is therefore. For Gaudiya Vaishnavas, devotees of Krishna, you know, what is the significance of Makara Sankranti? Anyone knows? I told Prashant Prabhu briefly in the morning. हाँ, Makara Sankranti, बराबर है. Makara Sankranti का क्या महत्व है Gaudiya Vaishnava संप्रदाय में? तो पूरी दुनिया के लिए शुद्ध दिन शुरू हो गया, लेकिन हमारे लिए हर दिन शुद्ध होता है.
तो है, फिर भी इसमें लता भगुताम भी लिखा हुआ है.
जी जी, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ. एनीवे, विदाउट टेकिंग फर्दर टाइम आई विल टेल. आज हमारे लिए इसका महत्वपूर्ण दिन यह है क्योंकि आज ही के दिन, मतलब मकर संक्रांति के दिन जो कल पड़ेगा, श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया था. ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन और एक समय है हमारे लिए, और ये जो वर्ष है ये श्री चैतन्य महाप्रभु का संन्यास ग्रहण करने का 500वां वर्ष है. द 500th एनिवर्सरी ईयर ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु इज टुमारो ऑन मकर संक्रांति. सो इसके लिए इसका बहुत महत्वपूर्ण है. और दूसरा महत्व ये है कि भीष्म पितामह, जो कि 12 महाजन में से एक है, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त है, उन्होंने अपना देह त्याग किया था और युधिष्ठिर महाराज को धर्म पे उपदेश दिए थे. इसलिए बहुत ही जरूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है. और इसके अलावा इसके मकर संक्रांति का और भी महत्व है. हम थोड़ा कोशिश करेंगे कुछ जानने का, थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए. और फिर मैंने विचार ये किया था कि आज के दिन या तो हम भीष्म पितामह पे चर्चा कर सकते हैं या चैतन्य महाप्रभु पे कर सकते हैं, और इन दोनों में से एक पे चर्चा करने के लिए भी हमारे पास पूरा समय नहीं है. मतलब हम बराबर से इसको जस्टिस नहीं कर सकते, वी कैनॉट कवर एक्चुअली. और कई दिनों से हर बार हमारे त्यौहार आते जा रहे हैं तो हम भगवद्गीता भी बराबर से ले नहीं पाए हैं. तो हम सोच रहे थे कि क्या करें, भगवद्गीता लें या फिर भीष्म पितामह पर कुछ चर्चा करें या चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लीला पर कुछ चर्चा करें. तो कोशिश करेंगे जितना भी समय हमारे पास है इस समय में थोड़ा बहुत चर्चा करने की कोशिश करेंगे. आज सुबह जब कुछ लेक्चर जो मैंने प्रिपेयर किया था उसको मैं वापस से पढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो मैं इंटरनेट पर गया और मैंने मेल खोली, और पहले ही मैंने मेल देखा परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज का मेल आया हुआ था, गिरिराज महाराज जो मेल भेजते हैं उन्होंने बहुत एक अच्छा एक मेल भेजा है चार लाइन का, जो मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा। गिरिराज महाराज इज राइटिंग, हरिनाम द चैंटिंग ऑफ द होली नेम एंड हरि कथा टॉक्स अबाउट कृष्णा गो टुगेदर। जैसे मैं सोच रहा था कि चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, ये युग धर्म है और हम सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र जप करें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो हरि नाम द चैंटिंग ऑफ द होली नेम एंड हरि कथा टॉक्स अबाउट कृष्णा गो टुगेदर। ये दोनों जो है हरिनाम और हरि कथा ये साथ साथ में चलते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक्सप्लेन दैट हरि कथा इज द स्वरूप शक्ति द पर्सनल एनर्जी ऑफ हरिनाम। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि हरि कथा जो है वह हरिनाम की एक स्वरूप शक्ति है। एंड दैट जस्ट एज कृष्णा इज प्रॉपरली वर्शिप्ड नॉट अलोन बट विद हिज स्वरूप शक्ति श्री राधा, रेसिटेशन ऑफ हरिनाम इज इनकम्प्लीट अनलेस अकम्पनीड बाय हियरिंग हरि कथा। तो गिरिराज महाराज इसमें लिखते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे बताते हैं कि जिस तरह हम भगवान श्री कृष्ण की अकेले पूजा नहीं करते हैं। मेरे को याद है एक बार यहाँ पर कोई महाराज आए थे, नाम मैं भूल गया, और हमने एक फोटो बताया था जिसमें सिर्फ कृष्ण थे, एक आसमान के बीच में खाली कृष्ण का फोटो था। तो उन्होंने तुरंत मेरे कान में बोला ऐसा नहीं बताना चाहिए, नो दैट कृष्णा इज नेवर अलोन। कृष्णा मीन्स उसकी जो शक्तियाँ हैं, उसके जो पार्षद है, वो सब साथ में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से भगवान कृष्ण की पूजा हम अकेले नहीं करते हैं, उनकी स्वरूप शक्ति श्रीमती राधा रानी के साथ करते हैं, उसी तरह से हरिनाम अपूर्ण है जब तक हम हरि कथा ना सुने। तो हरिनाम लेना और हरि कथा सुनना ये साथ साथ में चलते रहता है। तो ये पॉइंट मैंने पहले कभी ऐसा डायरेक्टली सुना नहीं था, तो मुझे बहुत पसंद आया। तो ये दोनों चीज बहुत जरूरी है। हरिनाम हम क्यों ले रहे हैं ये जानना भी उतना ही जरूरी है जितना हरिनाम लेना, क्योंकि जब हम जान के हरिनाम का उच्चारण करते हैं, हम हरिनाम लेते हैं, तो उसका महत्व जो होता है वो बहुत होता है। और यदि कोई न भी जाने तो भी हरिनाम का महत्व होता है। तो हरिनाम के महत्व को कम नहीं किया जा सकता कुछ भी कह के, लेकिन फिर भी अगर हरिनाम को हम समझ के लेते हैं तो उसका बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। सो मकर संक्रांति के बारे में खाली दो चार शब्द हम कहेंगे और फिर हम भगवद्गीता का एक श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद हम कोशिश करेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु पे बोलने की। तो मकर संक्रांति जो है उसमें जैसे प्रभु जी ने बताया बराबर से कि जो सूर्य है वो धनु राशि से मकर राशि में जाता है। द सन ट्रेवल्स फ्रॉम धनु राशि सेगिटेरियस टू कैप्रिकॉन एंड दिस मार्क्स एज द सेलेस्टियल पाथ ऑफ सन। सो वो दक्षिणायन से उत्तरायण में जाता है और कई सारे उसके नाम दिए हैं। और इसमें क्या होता है कि दिन जो है वो बड़े होते जाते हैं, रात जो है वो छोटे होते जाते हैं अभी। और ये जो हार्वेस्ट सीजन होता है वो कई लोग यहाँ से शुरू करते हैं। दिस इज वन ऑफ द फ्यू हिंदू फेस्टिवल विच आर सेलिब्रेटेड ऑन अ फिक्स डेट विच इज 14th of January। खाली कल के लिए 15 जनवरी को आया। और ये भी कहा जाता है कि ये जो है दिस इज द होली फेज ऑफ ट्रांजिशन, जैसा प्रभु जी ने बताया वो हिंदुओं के लिए सबके लिए। इट मेक्स द एंड ऑफ एन इनऑस्पिशियस फेज विच अकॉर्डिंग टू हिंदी कैलेंडर बिगिंस अराउंड मिड डिसंबर। इट इज बिलीव्ड दैट एनी ऑस्पिशियस एंड सेक्रेड रिचुअल कैन बी सैंक्टिफाइड इन एनी हिंदू फैमिली ऑन दिस डे ऑनवर्ड, मतलब इस दिन के बाद ही शुरू किया जा सकता है। लेकिन हम इसमें पूरी तरह से नहीं मानते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि हरिनाम जो है दैट इज द मोस्ट प्योरिफाइंग ऑफ एवरीथिंग इन द होल वर्ल्ड। तो जब हम हरिनाम का उच्चारण करते हैं, हरिनाम का कीर्तन करते हैं, तो कोई भी चीज जो है वो मलिन नहीं रहती, शुद्ध हो जाती है। संक्रांति मार्क्स द टर्मिनेशन ऑफ विंटर सीजन एंड बिगिनिंग ऑफ न्यू हार्वेस्ट। सो मकर संक्रांति के कई नाम है और कई देश में, मतलब भारत के कई राज्यों में अलग 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 तरह से मनाते हैं। हमको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे केरला में इसको आई थिंक तमिलनाडु में पोंगल कहते हैं इसको, और गुजरात में मकर संक्रांति कहते हैं, दूसरी जगह पे इसका और कुछ नाम है, जैसे गुजरात में उत्तरायण भी कहते हैं, और काश्मीर वैली में इसका नाम है शिशुर सेनाक्रात। इस तरह से अलग 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 नाम है और अलग अलग इसका महत्व है। तो पुराण के हिसाब से एक चीज जो मेरे को बहुत अच्छी लगी जब मैं पढ़ रहा था मकर संक्रांति के बारे में, वो ये है कि अकॉर्डिंग टू पुराणास ऑन दिस डे सन सूर्य विजिट द हाउस ऑफ हिज सन शनि हु इज द लॉर्ड ऑफ मकर राशि. दो द फादर एंड सन डिड नॉट गो अलोंग वेल टुगेदर द सूर्य मेड इट अ पॉइंट टू मीट हिज सन ऑन दिस डे. ही इन फैक्ट कम्स टू द सन्स हाउस फॉर अ मंथ. दिस डे दस सिंबलाइजेज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन. ओके, तात्पर्य यह है कि इस दिन सूर्य जो है वो शनि के घर में जाते हैं, ऐसी ऐसी मान्यता है, पुराणों में ऐसा वर्णन आता है. तो मैं सोच रहा था कि शनि और सूर्य दोनों की जमती नहीं है, बाप और बेटे की कई बार जमती नहीं है. तो उसी तरह हम जो है, हम भगवान के पुत्र हैं और हमने विद्रोह किया है, और विद्रोह करके हम इस संसार के अंदर आए हैं. तो भगवान वो स्वयं आते हैं हमारे जीवन में, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने मकर संक्रांति के दिन संन्यास ग्रहण किया, और वो संन्यास ग्रहण करके लोगों के हृदय में प्रविष्ट हुए और लोगों को हरिनाम संकीर्तन में लगाया. तो भगवान जो है वो सबसे ज्यादा कृपावान है, ही इज द मोस्ट कंपैशनेट फादर ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटी. और श्री कृष्ण भगवान भगवद गीता में भी ये चीज बताते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, कि जो ये जीव जो है वो मेरे अंश है, मेरे पुत्र है, माता धाता पितामह. वो कहते हैं कि मैं माता पिता और पितामह सब लोगों का हूं. सो इसके लिए ये एक और मतलब अच्छी बात है कि इस दिन ये समझना चाहिए कि हमारे जीवन के अंदर भक्ति की जो शुरुआत है वो हर दिन हमारे लिए मकर संक्रांति होनी चाहिए, कि हर दिन हम भगवान को अपने घर में बुलावे, उनको आमंत्रण दे. एक और वर्णन आता पुराण में कि भागीरथी जो है, भागीरथी भागीरथी ने अपने पूर्वजों का तर्पण करने के लिए, जल नहीं था एक्चुअली इस दुनिया के अंदर, तो उन्होंने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की, फिर उन्होंने उनको विष्णु के पास जाने के लिए बोला, और विष्णु के आशीर्वाद से गंगा माता नीचे आई. तो वो गंगा को नीचे लेके आए थे इस दिन पे, वो सगर ऋषि के जो पुत्र थे. और इसी के लिए ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है आज, जिसको गंगा सागर मेला भी कहते हैं. टुडे इज ऑल्सो गंगा सागर मेला विच इज सेलिब्रेटेड एट द पॉइंट वेयर गैंजिस मीट इनटू बे ऑफ बंगाल. बंगाल की जो खाड़ी है उसमें जब गंगा जाके मिलती है सागर में, तो वहां पर गंगा सागर मेला एक बहुत बड़ा महोत्सव मनाया जाता है. और मैंने ये भी सुना है कि हिजोलिनेस जयपता का स्वामी महाराज शायद वहां पे कई बार प्रोग्राम भी किए हैं. और कई लोग इस दिन गंगा के अंदर नहाते हैं. और दूसरा इंपॉर्टेंट जो इवेंट है वो महाभारत में आता है, कि महाभारत का जब युद्ध हुआ और युद्ध समाप्त होने के पश्चात भीष्म पितामह, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ था, उन्होंने अपना देह नहीं त्यागा. और वो खत्म होने के बाद जब उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर महाराज और पांडव वो चक्रवर्ती सम्राट बन गए हैं, और उसके बाद वे भगवान श्री कृष्ण के साथ भीष्म पितामह से मिलने जाते हैं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के द्वारा युधिष्ठिर महाराज को धर्म के उपदेश दिलवाते हैं. और इस दिन जब सूर्य उत्तरायण में आता है, तो इस दिन भीष्म पितामह बाकी सारी चीज को छोड़ के अपना ध्यान एकमात्र भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित करके अपने देह को त्यागते हैं. तो इसके लिए ये जो दिन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है. तो लास्ट टाइम मैंने पूछा था सत्यसा गोविंद प्रभु से, उन्होंने 21 और 22वां श्लोक लिया था सेनियोर भयोर मध्य, तो उसके बाद का जो 23वां श्लोक है वो आज हम पढ़ेंगे एक बार, और तुरंत वो पढ़ने के बाद हम श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ बोलने का प्रयास करेंगे. सो चैप्टर 1 टेक्स्ट नंबर 23 श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज. योत्स्यमानान् अवक्षेहम् ये त्रिसमागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिया चिकित्सवः. योत्स्यमानान् अवक्षेहम् ये त्रिसमागताः भारतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकित्सवः. तू प्रभु जी कैन रिसाइट. योत्स्यमानान् अवक्षेहम् ये ते अत्र समागताः भारतराष्ट्रस्य
दुर्बुद्धे
युद्धे
प्रियाचिकिष्यवः
योस्यमानानवेक्षेऽहम्
But Shiva Shankaracharya says, and Prabhupada repeats,
says that anyone who takes bath in the sacred Ganges water of Bhagavad Gita even once, for him the dirt of material life is altogether vanquished. Why? Because Bhagavad Gita is such an important scripture. It is the essence of the Vedas. Sarva Upanishad Gavo Dogdha Gopala Nandana Partha Vart Sudhir Bhokta Dugdham Gita Amritam Mahat. तो कहते हैं कि भगवद गीता जो है वो सभी उपनिषदों का सार है, उसी तरह ये गाय के तुल्य है और गाय का जो एसेंस है वो है दूध, और उस दूध को निकालने के लिए एक दोगधा की जरूरत पड़ती है जो भगवान श्री कृष्ण है, बछड़े को छोड़ना पड़ता है जो अर्जुन के रूप में है, और उससे जो अमृत तुल्य ये दूध निकल रहा है वे भगवान सभी भक्तों को और सभी जीवों को उसका पान करा रहे हैं। सो हमने देखा है कि पहले अध्याय की शुरुआत होती है सैन्य निरीक्षण से कि अर्जुन देखना चाहता है, और धृतराष्ट्र कहते हैं संजय से कि पांडु के पुत्रों ने और मेरे पुत्रों ने क्या किया, हे संजय मामका पांडवाश्च किम कुरुत संजय। वो कहते हैं, तो यहीं पे प्रभुपाद लिखते हैं कि धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को पांडवों के पुत्रों से अलग कर दिया। तो ये जो डिविजन की भावना है वो वहां से आई है कि ये तेरा है ये मेरा है, दोनों अलग कर दिया। फिर संजय कहते हैं कि दुर्योधन राजा था लेकिन फिर भी वो द्रोणाचार्य के पास गया और कहने लगा, और वे द्रोणाचार्य को कहने लगा कि देखो तुम्हारा जो शिष्य है धृष्टद्युम्न उसने किस तरह से पांडवों की सेना का की रचना की है और उसको देख लो, और उनकी उनकी सेना में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और वो उनके नाम लेता है कि कौन कौन से लोग है जो उस सेना में हुए, फिर अपनी सेना के बारे में बताता है। तो कई लोग ऐसे हैं कि कई बार जब किसी और के बारे में बोलने की बारी आती है तो हमारे पास शब्द नहीं मिलते हैं, बहुत थोड़े होते हैं, लेकिन जब हमारे पास हमारे लिए कुछ बोलना होता है तो ऐसा लगता है अनंत शेष के जो 1000 फन है वो भी कम पड़ते हैं, तो बोलते जाओ सुनते जाओ। सो इसके लिए तुरंत वो थोड़ी सी बात बोल के अपनी सेना की के बारे में बताने लगा और कहने लगा, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समिंजितय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्त तथैव च। वो बताने लगा कि मेरी सेना में कौन कौन है। देखो कहने लगा कि उनकी जो सेना है वो सीमित है और मेरी सेना जो है वो अपूर्ण है, मीनिंग बहुत बड़ी है, असीमित है, और उनकी सेना सीमित है। पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि इस शब्द को किस तरह से हकीकत में प्रेजेंट किया जा सकता है, और वे कहता है दैट अन्य च बहव सूरा मद अर्थे त्यक्त जीविता। वो कहने लगा कि मेरी सेना में कई ऐसे योद्धा है जो मेरे लिए मरने के लिए तैयार है। तो प्रभुपाद जी बताते कि पहले से ही उसका डिसीजन हो चुका है कि जो दुर्योधन की सेना में था वो मरने वाले हैं, और बाद में फिर वो आगे डिप्लोमेट की तरह काम करता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में जो हमने अब तक देखा है कि क्योंकि वो जाके सिर्फ द्रोणाचार्य की तारीफ कर रहा है तो उसको लगता है दूसरों को बुरा लग जाएगा, तो दूसरों के बारे में भी बोलना शुरू करता है कि भाई भीष्म पितामह का ध्यान रखो, ये करो वो करो। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि दुर्योधन की जो मनोदशा है वो एकदम डिप्लोमेटिक वे में बाहर आती है, और एक जो भक्त होता है उसको डिप्लोमेसी से दूर रहना चाहिए। तो कई बार हम सोचते हैं कि बस मैं ऐसा करूंगा तो ये होगा, वैसा करूंगा तो वो होगा। तो बाद में भीष्म उसकी बात नहीं सुनना चाहते थे, वो शंख बजाते हैं, शंख की गर्जना होती है और वहां से भी शंख बजते हैं, और संजय बताते पांचजन्य ऋषिकेशु देवदत्त धनंजय कि भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया और अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया, और इस शंख से जो तुमुल ध्वनि पैदा हुई उसने धृतराष्ट्र के जो बेटे थे उनके हृदय को विदीर्ण कर दिया। उन लोगों ने जब शंख बजाया तो ऐसा कोई वर्णन नहीं आता है कि पांडवों का हृदय विदीर्ण हो गया। तो इस समय अर्जुन जो एक बहुत ही मोहक रथ पर बैठा था उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जिसपे हनुमान जी का चिन्ह अंकित था उस रथ पर बैठा था, और कहा कि इस रथ को सीधा उस सेना के बीच में ले चलो ताकि मैं देखना चाहता हूँ। तो सेनयुर उभयोर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत। तो भगवान श्री अच्युत श्री कृष्ण को वो कहते हैं कि मेरा रथ को वहां पर ले जाओ और मैं देखना चाहता हूँ, और फिर ये आज का जो वर्ष हम ले रहे हैं इसमें कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से योद्धा है जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन की वजह से मेरे सामने आके खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है, और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, कहते हैं कि It was an open secret that Duryodhana wanted to usurp the kingdom of Pandavas by evil plans in collaboration with his father Dhritarashtra. So Dhritarashtra ki manodasha ye thi ki wo sirf Duryodhan ko us singhasan par baithna dekhna chahta tha aur iske liye wo koi bhi sandhi nahi karna chahta tha aur isliye usne janta tha ki jab do senaen Kurukshetra mein jama hui hai yuddh karne ke liye to obviously yuddh karenge aur kuch nahi ho sakta. फिर भी वो संजय से पूछता है कि उन दोनों ने क्या क्या किया, क्योंकि वो डरता था कि कहीं संधि ना कर ले. और जो लोग दुर्योधन की पार्टी में जमा हुए थे, एक तरह से हम मान सकते हैं कि सारे के सारे लोग उसी तरह दुर्बुद्धि होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो दुर्योधन की पार्टी में थे लेकिन वो दुर्योधन की पार्टी में नहीं रहना चाहते थे. और उसका एकदम ज्वलंत उदाहरण है पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये जो थे ये दुर्योधन की पार्टी में नहीं रहना चाहते थे. तो श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद के अंदर भीष्म के जो प्रार्थना है वो दी गई है, वो हम रिफर कर रहे थे. तो उसमें 1.9.17 में श्लोक प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं और वे कहते हैं द पॉपुलर सेइंग इज दैट द हाउसवाइफ टीचेस द डॉटर इन लॉ बाय टीचिंग द डॉटर. मतलब एक सास जो होती है वो अपने पुत्री के द्वारा अपने बहू को समझाती है कई बार, मतलब उसको कुछ कहना चाहती है लेकिन डायरेक्ट नहीं कहेगी तो किसी और के थ्रू कहेगी. इस तरह से सिमिलरली द लॉर्ड टीचेस द वर्ल्ड बाय टीचिंग द डिवोटी. तो इसके लिए भगवान एक भक्त के द्वारा इस संसार को ये एक संदेश देना चाहते हैं कि चाहे तुम दुनिया में कोई भी हो, भीष्म पितामह जैसे महाजन क्यों ना हो, लेकिन अधर्म के प्रति जाओगे, अधर्म का साथ दोगे तो तुम्हारा पतन होगा. तो ये भगवान बताना चाहते हैं द डिवोटी डज नॉट हैव टू लर्न एनीथिंग न्यू फ्रॉम द लॉर्ड बिकॉज द लॉर्ड टीचेस द सिंसियर डिवोटीज ऑलवेज विद इन वेयर एज देयरफॉर द शो इज मेड टू टीच द डिवोटी एज इन द केस ऑफ टीचिंग ऑफ भगवद गीता एज इट इज द टीचिंग फॉर लेस इंटेलिजेंट मैन ए डिवोटीज ड्यूटी देयरफॉर इज टू अनग्रजली एक्सेप्ट ट्रिबुलेंसेस फ्रॉम द लॉर्ड एज अ बेनेडिक्शन. तो हम देखते हैं कि पांडव जो है उनके प्रति कितनी उनको समस्याएं आई, कितनी कठिनाइयां आई, इतना सब उनको उठाना पड़ा, लेकिन फिर भी वो भगवान की इच्छा है ये मानकर उन्होंने सारी कठिनाइयों को सहन कर लिया. उसी तरह भीष्म पितामह वो अर्जुन ये दुर्योधन के खेमे में थे लेकिन फिर भी उनको पता था कि भगवान चाहते हैं कि मैं यहाँ पर रह के लोगों को ये संदेश भगवान मेरे द्वारा दे कि अधर्म का कभी हमको साथ नहीं देना चाहिए. और आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, कहते हैं कि भीष्मदेव स्पीकिंग इन दैट अपीलिंग टोन कन्विंस महाराज युधिष्ठिर दैट ही वाज वेरी सून पासिंग अवे. तो जब युधिष्ठिर महाराज को भगवान कृष्ण लेके गए भीष्मदेव के पास, और जैसे कि अर्जुन को ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं दिया था, भगवान स्वयं चाहते तो युधिष्ठिर को बता सकते थे, लेकिन भगवान जो क्रेडिट है वो भीष्म पितामह को देना चाहते थे और इसीलिए वो भीष्म के पास लेके गए और भीष्म से कहा कि भाई तुम इसको धर्म के बारे में उपदेश दो. तो भगवान जो है वो अपने भक्त का ज्यादा ध्यान रखते हैं. तो इस तरह से भीष्मदेव हम देखते हैं कि ऑल्दो दुर्योधन की पार्टी से लड़े लेकिन फिर भी भीष्मदेव जो है वो प्योर डिवोटी है, वो एक महाजन है, तो ये हमको समझना चाहिए. और आज ही का वो दिन है और भीष्म पितामह का देखिए कितना सौभाग्य है कि भीष्म पितामह एक बार जब युद्ध कर रहे थे तो दुर्योधन आके बार बार भीष्म पितामह से कहता था कि आप बराबर से युद्ध नहीं कर रहे हो. तो भीष्म पितामह को ये सहन नहीं हुआ कई बार 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 कहने पे, तो उन्होंने पांच बाण लिए, he took five arrows, और कहा कि इस पांच बाण के अंदर मैं अपनी सारी शक्ति लगा दूंगा आज मेरे जीवन भर की तपस्या, और कल पांडवों का मैं इससे नाश कर दूंगा. और दुर्योधन जिस तरह के वो दुर्बुद्धि था उसको भीष्म पितामह की बात पर विश्वास नहीं हुआ. तो कई बार हमको ये समझना चाहिए कि अगर जो ग्रेट सोल्स है, जो महान भक्त है, अगर वे कुछ कहते हैं तो उनकी बात हमें सुननी चाहिए, समझनी चाहिए. कई बार हम सुनने पे भी अनसुना कर देते हैं और समझते नहीं है. तो कई बार ऐसा होता है कि गुरु महाराज कुछ उपदेश देते हैं, आदेश देते हैं और हम उसको कुछ और ही इंटरप्रेट कर देते हैं. तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो आदेश मिला है उसका पालन करें, निश्चित उस पर मनन करना चाहिए लेकिन उस आदेश का पालन भी होना चाहिए. तो दुर्योधन ने सोचा कि नहीं, भीष्म पितामह कल को मुकर जाएंगे, तो उन्होंने कहा ये पांच बाण मेरे को दे दो, मैं संभाल के रखता हूँ और कल तुमको दूंगा. और भगवान जो कि सबके हृदय में निवास करते हैं, सर्वस्य चाहम हृदिसन्न विष्टो, भगवान सभी के हृदय में है और भगवान को ये पता था तो भगवान ने फिर अर्जुन को जाकर कहा, तो देखा कि अर्जुन सो रहा है बिंदास आराम से। एक्चुअली प्रभुपाद जी आगे के तात्पर्य में लिखते भी है कि भक्त जो होता है वो चिंता नहीं करता, वो नींद में जागने में हर समय भगवान का नाम लेते रहता है। तो अर्जुन सो रहे थे और वो सोते सोते भगवान श्री कृष्ण का नाम ले रहे थे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद इस तरह से। और हमारी क्या सिचुएशन है कि हम जब भगवान का नाम लेते हैं तभी सो जाते हैं, जैसे जब करने के लिए बैठते नींद आ जाती है। पहले शुरू करते योगी की तरह जैसे गौरांग प्रभु बता रहे थे, और चार माला होने के बाद नमाज पढ़ने लग जाते हैं, तुरंत झुक जाते हैं नीचे। लेकिन अर्जुन सोते सोते वो भगवान का नाम ले रहा था, और हम लोग नाम लेते लेते सो जाते हैं। ये डिफरेंस है हमारे में और अर्जुन में। तो भगवान ने उसको उठाया, बोला अरे अर्जुन सो क्यों रहा है? तो बोला तुझे चिंता नहीं है कल को क्या होगा? तो बोला अरे चिंता करने के लिए आप है ना भगवान, मैं थोड़ी चिंता करूंगा। तो भगवान ने उनको कहा कि याद है तेरे को एक बार दुर्योधन जब तुमको जंगल भेजा था तो उसको यक्षों ने पकड़ लिया था और तुमने उसको बचाया था? तो बोला हाँ याद है एक बार आया था वो। तो बोला कि हाँ उसने तुमने कुछ, तो एक्चुअली क्या हुआ था, दुर्योधन जब उनको वनवास हो गया था तो वहां पर भी उनको छेड़ने के लिए आया और यक्ष ने उसको पकड़ लिया। तो युधिष्ठिर महाराज ने भीम और दुर्योधन को अर्जुन को कहा कि जाओ दुर्योधन को छुड़ा दो। तो भीम कहने लगा जो काम हम नहीं कर सके यक्ष ने कर दिया, हरी बोल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं जाके अपने भाई को बचाओ। तो जब उसे छुड़ाया था तो दुर्योधन को बहुत बुरा लगा, लेकिन दिखावे के लिए उसने अर्जुन से कह दिया कि मुझसे कुछ वर मांग ले, तू छोटा है मुझसे। तो अर्जुन ने कहा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कोई आशा नहीं है तुम्हारे से, कभी जरूरत पड़ेगा तो मांग लूंगा। और इस तरह से उन्होंने उसका वर भी नहीं लिया। तो कृष्ण ने याद दिलाया, बोला याद है तेरे को? बोला हाँ। बोला जा और जाके उससे वो 5 तीर जो मांग ले। तो अर्जुन गया और दुर्योधन को कहा कि याद है वो दिन? तो दुर्योधन कैसे भूल सकता था वो दिन, कि अपमान का घूंट पिया था उसने, उसको याद था। तो अर्जुन ने कहा वो दिन याद है ना जिस दिन मैंने तेरे को छुड़ाया था यक्षों से? बोला हाँ। बोला तूने मेरे को एक वर दिया था, लाओ। तो बोला क्या चाहिए तुम्हें? तो बोला जो 5 तीर तुमने रखे ना, प्लीज गिव मी बैक, मेरे को दे दो। और दुर्योधन हालांकि क्षत्रिय था उसने दे दिया। तो दोबारा गया दुर्योधन पितामह भीष्म के पास। देखो कोई व्यक्ति की कैसी उद्दंडता है कि किस तरह से वो जाके वापिस पितामह भीष्म को कहने लगा कि मुझे 5 बाण और दो। भीष्म पितामह हंसने लगे, बोले सारी की सारी तपस्या जो मेरी थी वो इस 5 बाण में मैंने डाल दी थी और तेरे को दे दिया था, ठीक है अभी मेरे पास नहीं है जा। तो वापिस मांगने लगा। तो फिर वहां पर भी भीष्म पितामह ने समझाया। तो देखो एक जो भक्त होता है वो कोई भी अपॉर्चुनिटी प्रीचिंग की छोड़ता नहीं है, वो हर समय भगवान के बारे में बताने के लिए आतुर रहता है। ये एक भक्त की पहचान है, जहां पे टाइम मिलता है अपना प्रीचिंग चालू कर देता है। तो भीष्म पितामह ने वहां पर भी दुर्योधन को समझाया, बोला हे दुर्योधन दुर्बुद्धि, तेरे को इतना अभी समझ में आना चाहिए कि ये 5 बाण जो थे तेरे और मेरे बीच में थे और किसी को पता नहीं था। ओनली आई न्यू एंड यू न्यू दैट देयर वाज दिस 5 arrows व्हिच आई हैड इन्वेस्टेड ऑल माय पोटेंसी एंड ऑस्टेरिटी इनटू एंड गिवन इट टू यू। हाउ डिड अर्जुन नो दिस? अर्जुन को किस तरह पता चला? और दुर्योधन की बुद्धि में इतना भी नहीं आया, बोला कैसे पता चला? बोला मेरे को क्या मालूम कैसे पता चला। तो बोला उसको कृष्ण ने बताया। मतलब समझना चाहिए कि कृष्ण भगवान है, वे ऑर्डिनरी मॉर्टल नहीं है, वे जीव नहीं है, वे परमात्मा है, सभी के हृदय में वास करते हैं। और उन्होंने कहा है तो तुम अभी भी जाके कृष्ण को सरेंडर कर दे, अभी भी तेरे पास चांस है। लेकिन दुर्योधन माना नहीं और फिर दुर्योधन का नाश हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने उससे वाण ले लिए थे। तो ये जब दूसरे दिन जब वो फाइट कर रहे थे भीष्म पितामह, तो इतनी प्रबलता से वो युद्ध कर रहे थे कैसा लग रहा था कि महाभारत का युद्ध उसी दिन खत्म हो जाएगा 10वें दिन, और पूरा महाभारत खत्म। तो उस समय वो जब तीर मार रहे थे तो वो तीर अर्जुन को भी लग रहे थे और कृष्ण को भी लग रहे थे, और कृष्ण को गुस्सा आ रहा था। लेकिन अर्जुन अपने प्रेम वश भीष्म पितामह के साथ उस तरह से युद्ध नहीं कर पा रहा था। तो जब इतना सब कुछ हो गया तो कृष्ण ने ये प्रण लिया था कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म पितामह ने यह प्रण लिया था कि मैं तुमसे शस्त्र उठवा के रहूंगा। तो ये दोनों के भक्त और भगवान के बीच में चैलेंज लगा था। तो जिस तरह से भीष्म पितामह युद्ध कर रहे थे, अर्जुन का उन्होंने आर्मर तोड़ दिया, उनका सब कुछ खत्म कर दिया, तो कृष्ण को तब गुस्सा आया, वो रथ से नीचे उतरे और भागे भीष्म पितामह को मारने के लिए। और ऐसा वर्णन आता है कि जिस तरह से एक सिंह एक हाथी के ऊपर अटैक करने के लिए जब जाता है, उस पर प्रहार करने के लिए जाता है, उस तरह से कृष्ण दौड़े और उन्होंने एक चक्र उठा लिया, छकड़ा जो होता है व्हील, और वो उठाकर भीष्म पितामह पर मारने आए। और भीष्म पितामह ने अपने वाण और धनुष जमीन पर रखे, और तुरंत ये फोटो भी आपने देखा रहेगा कि दोनों हाथ पसार के भगवान कृष्ण के आगे आ गए, और अर्जुन जाके भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए और बोले कि नहीं ये आप क्या कर रहे हो, आप अपना प्राण आपने तोड़ दिया सिर्फ मेरे लिए, और फिर अर्जुन आके फाइट करने लगा, फिर भी भीष्म पितामह को मार नहीं सका। तो भीष्म पितामह के पास सारे पांडव गए और बोले कि कृपया हमको बताइए कि हम लोग किस तरह से तुमको मारे, आप जब तक नहीं बताओगे तब तक हम आपको मार नहीं सकते। और भीष्म पितामह ने सारी स्टोरी बताई और फिर कहा कि शिखंडी को मेरे सामने लाके खड़ा करो, और शिखंडी मेरे सामने रहेगा तो मैं तुम पे वार नहीं करूंगा और तुम किस तरह से मुझे मारना। और इस तरह से फिर अर्जुन ने भीष्म पितामह का वध किया। तो ये बहुत बहुत ही बड़ी स्टोरी है, समय के अभाव से हम इसको डिटेल में नहीं बता सकते। तो उस भीष्म पितामह का प्राण रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना प्राण त्याग दिया। तो भगवान इतने कृपालु है, और वही कृपालु भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, किस लिए? हम लोग को भक्ति सिखाने के लिए, कि किस तरह से प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमको कोई चीज कह के सुन के समझ में नहीं आती, प्रैक्टिकल उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखना पड़ता है। और प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं और वो लोगों को सिखाते हैं कि किस तरह से भक्ति करनी चाहिए। और हम लोगों को भक्ति सिखाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया कि भगवान के 6 ऐश्वर्य है, उसमें एक ऐश्वर्य है वैराग्य, उस वैराग्य को धारण किया, और उस वैराग्य को धारण कर कर लोगों को ये बताया। और ये श्री चैतन्य महाप्रभु का 500वां संन्यास वर्ष है। तो अभी हमारे पास जितना भी समय रहेगा थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे लिए समझना बहुत आवश्यक है कि क्यों श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, क्या आवश्यकता थी श्री चैतन्य महाप्रभु को कि संन्यास ले। वे चाहते हैं तो भक्ति ऐसे भी सिखा सकते थे। तो आप जैसे जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु का एक मिशन था हरिनाम संकीर्तन, और उस हरिनाम संकीर्तन को गोलोक प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन को लेके आए। और वे शिवाश ठाकुर के घर में संकीर्तन किया करते थे। आप सभी को स्टोरी पता होगी, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। और श्री चैतन्य महाप्रभु उस कीर्तन में संलग्न रहते थे और शिवाश ठाकुर के साथ और अपने अन्य पार्षदों के साथ बंद कमरे में भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करते थे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन करते थे, और उस संकीर्तन में सिर्फ भगवान के पार्षद वो सुन पाते थे। और कई लोग जब संकीर्तन करते हैं तो हमने देखा कई बार नेबर लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये उस जमाने भी नेबर डिस्टर्ब होते थे। तो श्रीवास ठाकुर के जो पड़ोसी थे वो उनसे डिस्टर्ब होते थे, और कई बार वो कहते थे कि श्रीवास ठाकुर का घर तोड़ के इसको गंगा में फेंक दो, इनको मार दो, ये करो वो करो, बहुत सारी कुछ कहते थे। और एक बार एक ब्राह्मण उस संकीर्तन, एक्चुअली कई बार ऐसे इंसिडेंट हुए थे कि एक बार श्रीवास ठाकुर के घर पे उनकी सास वो उनका कीर्तन देखने के लिए आई थी, उनको चैतन्य श्रीवास ठाकुर ने भगा दिया था। और एक ब्रह्मचारी था जो चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन देखना चाहता था, जो सिर्फ दूध पीता था। तो श्रीवास ठाकुर को बार बार कहने पे श्रीवास को दया आ गई, उन्होंने कहा ठीक है छुप के तू जरा देख लेना भगवान का कीर्तन। और चैतन्य महाप्रभु ने इमीडिएटली कहा कि कोई कौन है यहाँ पे जो कीर्तन में नहीं होना चाहिए वो है यहाँ पर। और फिर उस ब्रह्मचारी के बारे में श्रीवास ने कहा कि अरे ये बहुत अच्छा ब्रह्मचारी है, खाली दूध पीता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जस्ट बाय ड्रिंकिंग मिल्क डू यू थिंक यू विल अचीव कृष्णा। तो इस तरह से एक ब्राह्मण उसमें घुसने की कोशिश कर रहा था और उस दरवाजे को बार बार बजा रहा था और कहता था कि मुझे तुम्हारा ये कीर्तन देखना है, कीर्तन देखना है। तो कीर्तन जो है वो देखने की वस्तु नहीं है। महाराज ने अभी मैंने कुछ मेल्स भेजे थे, उसमें महाराज कहते कि कीर्तन ये नहीं है कि तुम खाली उसको अपने कान के द्वारा उसका दर्शन करो। कीर्तन का मतलब है कि आप पूरी तरह से उसके अंदर यू नो उसके अंदर पूरी तरह से एकदम मिल जाओ, डूब जाओ और भगवान पे पूरी तरह से पूर्णतया आश्रित होकर भगवान की शरण ग्रहण करने की कोशिश करो। सो उस तरह से उसको वो कोशिश कर रहा था जाने की, लेकिन वो अंदर जा नहीं पा रहा था। तो बहुत कोशिश करने के बाद भी वो जा नहीं पाया। तो दूसरे दिन जब वो गंगा के किनारे से जा रहा था, श्री चैतन्य महाप्रभु उसको सामने मिले और उसने श्री चैतन्य महाप्रभु को निमाई को बहुत डांटा और उसने कहा, हे निमाई, तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या तुम समझते हो कि तुम इस तरह से कीर्तन करोगे और दूसरों को अलाउ नहीं करोगे? तुम ये कीर्तन नहीं कर रहे हो, तुम कीर्तन करने का ढोंग कर रहे हो और इसके लिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस तरह से तुमने मुझे तुम्हारे कीर्तन में उस घर में घुसने नहीं दिया, उसी तरह से तुम भी अपने घर में रह नहीं पाओगे और तुम तुम्हारे घर से तुमको दूर जाना पड़ेगा और तुम अपने घर में नहीं रह पाओगे। कहने का तात्पर्य कि तुम्हारा संन्यास होगा। और इमीडिएटली चैतन्य महाप्रभु उनके चरणों में पड़ के बोले कि हे ब्राह्मण देव, आपने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया। और फिर ब्राह्मण को लगा, कह रहे मैंने क्या कह दिया गुस्से में। और कई बार गुस्से में हम कई चीज कह देते हैं लेकिन बाद में पछताते हैं। तो फिर उसने सोचा कि नहीं, अरे मेरी इच्छा नहीं थी आपको कहने की, मुझे पता नहीं किस तरह से मेरी जीवा पर ये शब्द आ गया और मैंने आपको कहा। वो चैतन्य महाप्रभु थे जिन्होंने उनकी जीवा पर ये शब्द लाए थे और उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, तुमने बहुत अच्छा काम किया और अच्छा है कि मैं संन्यास लूंगा। तो एक दिन और चैतन्य महाप्रभु ने अपना ये जो संन्यास लेने का जो मूड था वो रिवील किया था कि श्रीवास के घर में कीर्तन कर रहे थे और श्रीवास के बच्चे की मृत्यु हो गई और उस मृत्यु के बीच में श्रीवास ने दूसरी महिला से कहा था कि कोई भी रोना मत, क्योंकि अगर रोए और चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन बंद हुआ तो मैं तुम्हारी खैर नहीं। और कुछ घंटों के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु रुके और उन्होंने पूछा कि हे श्रीवास, आज कीर्तन में मेरा मन नहीं लग रहा है, क्या बात है? तो फिर किसी ने कहा कि हे गौरांग महाप्रभु, श्रीवास का जो बेटा है वो मृत्यु को प्राप्त हो गया है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अरे, किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? तो फिर अद्वैत आचार्य कहने लगे कि श्रीवास नहीं चाहते थे कि आपको बताए। और फिर वो उस बच्चे की तरफ गए और उसको वापस जिला दिया, उसको उठाया और कहा कि अरे बच्चे, तुम क्यों छोड़ के गए? तुम्हारे माँ बाप देखो तुमसे कितना प्यार करते हैं। और वो कहने लगा कि कौन से माता पिता, इस जन्म में मेरे कई माता पिता हो चुके हैं। और इस तरह से उन्होंने उपदेश दे के श्रीवास और उनको शांत करके वो आगे चले गए। और फिर श्रीवास उनसे कहने लगे कह रहे, ये मेरा पुत्र क्या गया? एक्चुअली तुम और नित्यानंद ये दोनों मेरे पुत्र हो। और वह कहने लगे कि आप मेरे मालिक हो। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहने लगे कि नहीं, निताई और मैं दोनों तुम्हारे पुत्र के समान है। और इस तरह से कीर्तन करते थे और चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि श्रीवास जैसे भक्त मुझसे इतना प्यार करते हैं, किस प्रकार मैं श्रीवास ठाकुर जैसे भक्त को छोड़ के संन्यास ग्रहण करूंगा। तो पहली बार चैतन्य महाप्रभु ने अपना मूड वहां पे बताया कि वो संन्यास लेना चाहते थे। और उसके बाद जब इस ब्राह्मण ने उनको इस तरह का श्राप दिया कि भाई तुम घर से चले जाएगा, श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हो गए। और बाद में चैतन्य महाप्रभु अभी उस स्टेज में थे कि वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के श्याम सुंदर के प्रेम में आप्लावित रहते थे, उसमें डूबे हुए रहते थे और हमेशा भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचते थे। वे ग्रामर के टीचर थे, ग्रामर पढ़ाते थे, कोई उनसे पूछता था तो सीधा कृष्णा से कनेक्ट करते थे। और शिष्य लोगों को, स्टूडेंट को समझ में नहीं आता था श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहना चाहते हैं। किसी ने पूछा वर्णाश्रम क्या है तो चैतन्य महाप्रभु जवाब देते थे कि वर्णाश्रम वो है जो भगवान ने क्रिएट किया है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य, और कृष्णा इज द सोर्स ऑफ वर्णाश्रम। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ही चर्चा करने लगते थे। और इतना भगवान से विरह में थे वो, विप्रलंब भाव में, कि हमेशा बस भगवान के बारे में सोचते थे कि हो श्याम सुंदर, हे कृष्ण, हे मथुराना, तुम कहाँ हो? बस उसी तरह से वे उसमें अप्लावित रहते थे। और एक दिन इसी तरह से अपने विरह की अग्नि में जलते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु याद कर रहे थे वृंदावन को, श्याम सुंदर को, श्री कृष्ण को और गोपी को। और वे गोपी 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 मथुरा वृंदावन इस तरह से चर्चा कर रहे थे। और एक शिष्य उनकी तरफ आया और उसने देखा कि अरे ये चैतन्य महाप्रभु क्या गोपी गोपी कर रहे हैं। तो उनको कहने लगा, उनको कहा, अरे ये तुम क्या गोपी गोपी कहते हो? शास्त्रों में लिखा है कृष्ण का नाम लेना, कौन से शास्त्रों में लिखा है गोपी का नाम लेना? तुम कृष्ण का नाम लो। तो वो जो शिष्य था वो अपने गुरु को पढ़ा रहा था। देखो तो ये उद्दंडता कोई भी व्यक्ति कर सकता है कि अपने से जो महान भक्त है, गुरु है, उनको जाके शिक्षा देने लगे और कहे के देखो ऐसा करो वैसा करो। तो हमको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी मर्यादा अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। मर्यादा अतिक्रमण जो है उसका रिजल्ट बहुत खतरनाक होता है। तो वे श्री चैतन्य महाप्रभु सोच रहे थे और वृंदावन वृंदावन इस तरह करके और ये आके कहने लगा, कह रहे गोपी गोपी ये तुम क्या गोपी गोपी कह रहे हो? कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का नाम भजो, शास्त्रों के अंदर कृष्ण के नाम लेने का वर्णन है। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृष्ण वह उद्दंड जिसने बाली को मार दिया था, बाली ने उसका क्या बिगाड़ा था, लेकिन झाड़ के पीछे से छुप के राम के रूप में आया, उसने बाली को मार दिया। बलि महाराज वह उनको भिक्षा देना चाहते थे और वो भिक्षा देने के रूप में वो आए वामन के रूप में और सर्वस्व हर लिया। वैसे कपटी कृष्ण का नाम मैं क्यों लू, भाग, तू मुझे समझा मत भगवान कृष्ण का नाम लेने के लिए। और उन्होंने एक छड़ी उठाई और छड़ी उठा के तुरंत उसके पीछे भागे और उसको मारने के लिए गए, और वो जो शिष्य था वो अपनी जान बचा के भागा, एकदम भागते 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 गया। और चैतन्य महाप्रभु सोचने लगे, तो जब भाग के गया तो दूसरे स्टूडेंट उससे मिल गए और वह कहने लगा कि तुमको पता है आज मेरे साथ क्या हुआ। तो दूसरे ने कहा क्या हुआ बताओ। तो कई बार क्या होता है कि जब गॉसिपिंग की जब बात आती है तो सब लोग उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, क्या हो? और सुना उनको। तो कहने लगा कि आज मैंने देखा कि निमाई पंडित, वो अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझते हैं, और उन्होंने आज देखा मैं तो गोपी गोपी कह रहे थे, और मैंने जाके उनसे कहा कि कृष्ण का नाम लेना चाहिए, बोलो सही कहा कि नहीं। तो सब लोग ने कहने लगा हाँ सही कहा, कृष्ण का नाम लेने का। तो कई बार हम लोग कुछ गलत काम करते हैं और उसका जो समर्थन चाहते हैं दूसरों से, चलो मेरा समर्थन करो मैंने गलत काम किया, किया कि नहीं। तो फिर इस तरह से वैष्णव निंदा के अंदर हम बढ़ते जाते आगे आगे। तो उसने कहा कि हाँ बरोबर है, तो क्या मैंने वैसे ही कहा उनको, लेकिन जब मैंने कहा कृष्ण का नाम लो तो उन्होंने छड़ी उठाई और छड़ी उठाकर मेरे पीछे भागे और मेरी जान लेने के लिए मुझे मारने के लिए भागे। तो सब लोग कहने लगे अरे वो निमाई पंडित अपने आप को क्या समझता है, वो समझता है वो किसी राजा का लड़का है क्या, वो जगन्नाथ मिश्रा का लड़का होगा, लेकिन हम भी कम नहीं है, हम भी हमारे पिताजी है वो भी पंडित है, ये है वो है, इस तरह से क्रिटिसाइज करने लगे और कहने लगे कि नेक्स्ट टाइम अगर चैतन्य महाप्रभु कभी ऐसा करेंगे तो हम उनको बांध के उनको मारेंगे, वी विल बीट चैतन्य महाप्रभु, नो निमाई पंडित, इस तरह से बात करने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु सोचने लगे कि अरे इस दुनिया में मैं क्यों आया, इस दुनिया में मैं आया हूँ लोगों को ये बताने के लिए कि कृष्ण प्रेम क्या है। नो उन्होंने क्या कहा, हरिदास ठाकुर को क्या कहा, सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास अमर आज्ञाए जाओ करी हो प्रकाश, प्रति घर घर जाओ करो ई शिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण बोलो कृष्ण शिक्षा। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताने गए तो उन्होंने कहा कि अरे ये क्या हो रहा है, मैं लोगों को भगवान के बारे में बताने आया हूँ लेकिन मेरा जो ये जो एक्सटेसी है उसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं और मेरे प्रति अपराध कर रहे हैं, और इस तरह से अगर वे अपराध करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण को कभी नहीं पाएंगे, तो इससे अच्छा है कि मैं संन्यास ले लूँ, क्योंकि अगर मैं संन्यास लूंगा तो ये वो सारे व्यक्ति जो मुझे मेरी निंदा कर रहे हैं, दोस्त हु आर क्रिटिसाइजिंग मी, दे विल फॉल ऑन माई लोटस फीट, बिकॉज एक सन्यासी को हर कोई प्रणाम करता है। इसलिए प्रभुपाद जी भी लिखते हैं तात्पर्य में कि सन्यासी कहीं का भी हो, चाहे वो कोई भी संप्रदाय का हो, जब हम सन्यासी को देखते हैं तो दंडवत प्रणाम करना चाहिए, उनके सामने गिर के तुरंत सन्यासी को का आदर करना चाहिए। सो इस तरह से उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं, तो वे गए और नित्यानंद प्रभु को मिले अलग से जाके, और नित्यानंद प्रभु को कहने लगे कि हे निताई तुम तो मेरे अंतरंग पार्षद हो, आज मैं तुमसे एक बात कहूंगा जो बात कहने के लिए मैं कई वर्षों से कोशिश कर रहा था लेकिन कह नहीं पा रहा था। तुम्हें पता है कि मैं और तुम दोनों कृष्ण बलराम है और हम दोनों भाई कृष्ण बलराम आए हैं दुनिया में कृष्ण प्रेम देने के लिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये जो लोग है ये माया में इतने अंदर फंसते जा रहे हैं और कृष्ण प्रेम को समझ नहीं पा रहे हैं, और इसके लिए मैं देख रहा हूँ कि आज लोग मुझे मेरी निंदा कर रहे हैं और मुझे मारने के लिए भी आए। तो नित्यानंद प्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोला कि अरे क्या तुमको मारने के लिए आए वो, कि हाँ आज मेरे स्टूडेंट ही मुझे मारने के लिए आए थे। तो इस तरह से मैं किस तरह से उनको प्योर भक्ति जो है शुद्ध भक्ति दे पाऊंगा, इसलिए मैंने सोचा है कि जल्द ही मैं अपने मेरा जो सिर है उसका मुंडन करूंगा और संन्यास ग्रहण कर लूंगा। और ये जो शब्द थे ये नित्यानंद प्रभु पे एक थंडरबोल्ट एक वज्र के समान पड़े। उन्होंने कहा क्या संन्यास, संन्यास तुम क्यों संन्यास लोगे? तो श्री गौरांग महाप्रभु ने कहा कि मैं द्वार द्वार पे जाऊंगा भिक्षा मांगूंगा और वे लोग जो मुझे मेरी निंदा करते हैं वे जब मुझे प्रणाम करेंगे तो मैं उनको कृष्ण प्रेम प्रणाम कर दूंगा। तो देखो श्री चैतन्य महाप्रभु को सिर्फ देखने मात्र से उनको प्रणाम करने मात्र से कृष्ण प्रेम मिल जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वो निताई ने कहा कि वो बात सही है लेकिन विष्णु प्रिया का क्या होगा, सची माता का क्या होगा, उस पर क्या बीतेगी, उसके बारे में तुमने नहीं सोचा, तुम्हारे इतने अच्छे अच्छे मित्र हैं उनको तुम छोड़ के चले जाओगे उन पर क्या बीतेगी, तुमने नहीं सोचा किस तरह से गदाधर पंडित सहन कर पाएंगे, किस तरह से अद्वैत आचार्य और दूसरे जो श्रीवास और दूसरे जो है मुकुंद मुरारी ये सब किस तरह से वो सब मर जाएंगे, तुम संन्यास मत लो। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नहीं तुम इस तरह से बात मत करो, तुम्हें पता है कि मेरा अंतरंग इच्छा क्या है और मैं मेरा मिशन क्या है यहाँ पर आने का, तो प्लीज मुझे रोको मत। और नित्यानंद प्रभु कहने लगे कि हे चैतन्य महाप्रभु आप सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, भगवान है, आपको कौन रोक सकता है? नो, यू आर द सुप्रीम इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एंड वॉट एवर यू विश विल सडनली कम टू पास. Who in the three world has the power to stop you? You are the master of everyone. You are the supreme protector. Whatever you desire, ultimate is for the ultimate benefit and welfare of the living beings. But my dear Lord, please speak to other Vaishnava devotees before you take this heartbreaking decision. तो उन्होंने कहा कि इससे पहले कि तुम संन्यास ग्रहण करो, जाके तुम्हारे दोस्तों से पूछो और कम से कम उनके परमिशन लो. तो उन्होंने कहा कि ठीक है नित्यानंद, मैं जाता हूँ. और इस तरह से वे गए और चैतन्य महाप्रभु अपने सारे जो उनके जो नित्य संगी थे उनके पास जाकर बैठ के और उनको बताने लगे. उन्होंने कहने लगे, वो कहे कि आई हैव कम हियर टू प्रिस्क्राइब द मेडिसिन पिपली खंड विच वॉज प्रिपेयर्ड टू क्योर एक्सेस म्यूकस बट इट्स गिविंग अपोजिट इफेक्ट, द म्यूकस इज ओनली इंक्रीजिंग. उन्होंने कहा कि मैं एक पिपली खंड एक दवा लेके आया था जो कफ पित्त वायु को दूर करने वाली थी, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि जो ये बात है ये बढ़ता ही जा रहा है. तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं. तो वे कहने लगे कि कृष्ण के बिना जीवन जो है वो जीवन नहीं है, वो अपूर्ण है. वो उसी तरह से है कि जिस तरह से एक मछली जो जल के बिना है और एक ब्राह्मण जिसको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है. तो उन्होंने कहा कि कृष्ण के विरह में मेरा हृदय जो है वो संतप्त हो रहा है, प्रताड़ित हो रहा है. और कृष्ण के विरह में मैं इस तरह से डूबा जा रहा हूँ इस अग्नि में कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ मुझे कृष्ण भगवान के बारे में बस एक सोच रहा है और अभी मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं. इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने सिर को मुंडन करवा के सन्यास लूंगा. और जैसे ही उन्होंने सन्यास की बात की, एक वज्र समान सब जो मित्र थे उनके उनके ऊपर गिर पड़ा और एक एक करके सारे के सारे सारे लोग वो रोने लगे, बिलखने लगे और चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करने लगे कि क्यों सन्यास आप ले रहे हो, आपको सन्यास लेने की क्या आवश्यकता है. तो उन्होंने कहा, मुकुंद ने कहा, उन्होंने कहा कि आप जो ये शब्द कह रहे हो उससे मेरे हृदय के ऊपर ऐसा लग रहा है कि वज्रपात हो रहा है, किस तरह से तुम ऐसा कर सकते हो और हमको छोड़ के जा सकते हो. मुरारी गुप्ता ने कहा कि हे चैतन्य, तुमने जो एक ये वृक्ष लगाया हरिनाम संकीर्तन का, अभी उसका फल आने की देरी है और उसमें फल आवे उससे पहले उस फल को काट के तुम चले जाना चाहते हो और हमारा संग छोड़ना चाहते हो. फिर श्रीवास ठाकुर ने कहा, अद्वैत आचार्य ने कहा कि अरे सची माता पे क्या बीतेगी, क्या तुमने उसके बारे में नहीं सोचा? विष्णु प्रिया पे क्या गुजरेगी, उस पर क्या होगा, तुमने नहीं सोचा? अगर तुमने सन्यास लिया तो हम सब मर जाएंगे और अगर तुम चाहते हो कि हम सब मर जाए तो जाओ, तुम जाओ सन्यास लो. तो इस तरह से कई डायलॉग हुए और उनके बीच में वो एक दूसरे से कहने लगे. श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि देखो तुम सब जानते हो. गदाधर पंडित ने कहा चैतन्य महाप्रभु, कौन से शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि एक हाउस होल्डर जो है उसको अपने बाल कटवा के इतने यंग एज के अंदर जाके संन्यास लेना चाहिए? तो उन्होंने फिर गदाधर पंडित से कहा कि हे गदाई, प्लीज तुम तो समझो, तुम तो मेरे एकदम क्लोज फ्रेंड हो, आई एम नोन एज गौरांगा गदाई. तो क्या कम से कम तुम तो समझो, तुम तो ऐसी बात मत करो. तो वे सारे के सारे भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु के पैर पड़ने लगे, उनको कहने लगे कि प्लीज आप संन्यास मत लो, इस तरह से कह के. और फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उन्होंने सबको कन्विंस कर दिया और कन्विंस करके और फिर वो आगे बढ़े और फिर उन्होंने कहने लगा कि मेरा जो हृदय है ये संतप्त है तो अभी हरिनाम संकीर्तन करो. और उन्होंने मुकुंद दत्त से कहा कि हे मुकुंद, तुम हरिनाम संकीर्तन गाओ. और मुकुंद फिर हरिनाम गाने लगा और उस हरिनाम के संकीर्तन के तुमुल घोष के अंदर सब लोग भूल गए कि चैतन्य महाप्रभु ने किसी से संन्यास की बात भी की थी. और इस तरह से कीर्तन के बीच में श्री चैतन्य महाप्रभु चले गए. और चैतन्य महाप्रभु जब गए, घर पहुंचे तो सची माता को और विष्णु प्रिया को भी खबर मिल चुकी थी. कई बार उनको ये पता चला था कि चैतन्य महाप्रभु घर छोड़ के जाने वाले. तो सची माता और श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच में वार्तालाप होता है और विष्णु प्रिया और चैतन्य महाप्रभु के बीच वार्तालाप होता है. उस वार्तालाप करने की योग्यता हमारे बीच में नहीं है. तो लेकिन सची माता ने उनको बहुत समझाया कि अरे सब लोग कहते हैं कि मैं जो हूँ बहुत भाग्यवान हूँ और तुम नारायण का अवतार हो, और क्यों तुम मुझको छोड़ के जाना चाहते हो? मेरा एक पुत्र विश्वरूप ऑलरेडी मुझे छोड़ के जा चुका है, मेरे पति ऑलरेडी भगवान के धाम को प्राप्त हो चुके, मेरा कोई सहारा नहीं है, मुझे क्यों छोड़ के तुम संन्यास ग्रहण करने की बात कर रहे हो? तुम चले जाओगे तो मैं उस गाय की तरह होंगी जिसका बछड़ा खो गया है और उसको कुछ नहीं मिल रहा है. इस तरह से कई चीजें उन्होंने कही और विष्णु प्रिया ने भी श्री चैतन्य महाप्रभु को कई चीज समझाने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि तुम जो कीर्तन करोगे उसके बीच में डिस्टर्ब नहीं करूंगी, तुम जो कुछ करना चाहते हो करो, लेकिन प्लीज संन्यास मत लो. लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्योंकि वो भगवान है, वो सबको कन्विंस कर दिया। और वह मकर संक्रांति के पहले की रात श्री चैतन्य महाप्रभु सोए थे और उनका एक परम मित्र श्रीधर कोलावेच वो आता है उनके लिए एक पंपकिन लेके, और वो पंपकिन लेके उनको लाके देता है। और सची माता सोचती है इस पंपकिन का मैं क्या करूंगी, और कोई और एक भक्त आके उसको दूध देके जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये जो पंपकिन है, ये काशीफल, इस काशीफल का तुम खीर बनाओ और ये खीर मैं खाऊंगा। तो पंपकिन खीर वॉज द लास्ट प्रोडक्ट विच चैतन्य महाप्रभु भोग, चैतन्य महाप्रभु टुक, और वो बनाया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसको खाए और रात्रि होने के 2 घंटे पहले श्री चैतन्य महाप्रभु जागे और उन्होंने देखा कि द्वार पर सची माता खड़ी है, लेकिन वो एक पत्थर की तरह खड़ी है और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु गए, उनका लास्ट दर्शन किया, फिर लौट के आए, उन्होंने सची माता का आलिंगन किया, उनके आंसू पहुंचे, उनका चरण स्पर्श करके श्री चैतन्य महाप्रभु चले गए। और सची माता उसके हृदय पे वज्रपात हो गया, वो रोने भी लगने लगी और सभी विलेजर्स को पता चला कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास के लिए चले गए। सब लोग रोने भी लगने लगे और अद्वैत आचार्य आए और वो कहे कि अभी इस जीवन में और कोई सार नहीं है, हम जाके आत्महत्या करते हैं। और जैसे वो आत्महत्या करने गए तो सारे गांव वाले उनको कहने लगे कि यस अद्वैत आचार्य तुम हमारे लीडर हो और तुम जो करोगे वो हम करेंगे, हम तुमको रोकेंगे नहीं, हम भी तुम्हारे साथ में आएंगे और आत्महत्या कर लेंगे। और वे जब आत्महत्या करने जा रहे थे तो आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में कहा कि हे अद्वैत आचार्य तुम सभी की जान मत लो, चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आएंगे। और चैतन्य महाप्रभु गंगा पार करके कटक नगर कटवा में चले गए और केशव भारती महाराज को जाकर मिले और कहने लगे कि हे केशव भारती महाराज मैं आपसे संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ। और केशव भारती महाराज ने कहा कि अरे तुम 24 वर्ष के युवक हो, किस तरह से मैं तुमको संन्यास दे सकता हूँ, मैं तुमको इस तरह संन्यास नहीं दूंगा। तो कई बार उनका आर्ग्यूमेंट हुआ और चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, उन्होंने केशव भारती महाराज को भी कन्विंस कर दिया। और केशव भारती महाराज ने लास्ट उनको कहा कि नहीं मैं तुम्हें संन्यास तब दूंगा जब तुम्हें तुम्हारे माँ और तुम्हारी जो पत्नी है वो उसके लिए परमिशन दे देगी। तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत भागे परमिशन लेने के लिए गंगा पार करने के लिए और केशव भारती महाराज ने उनको बुला लिया, बोला रुको रुको रुको, तुम भगवान हो, ईश्वर हो, तुम किसी को भी कन्विंस कर सकते हो, तो तुम वापस जाओगे तो तुम सची माता को भी कन्विंस करके आ जाओगे, तो आओ मैं तुमको संन्यास दूंगा। तो तभी वहां पर बहुत सारे जो विलेजर्स थे वो कहने लगे केशव भारती महाराज को कि हे केशव भारती महाराज ये अपराध है, ये सही नहीं है, आप इसको किस तरह से चैतन्य महाप्रभु को आप संन्यास दे सकते हो। और कहे कि अगर आपने संन्यास दिया तो हम तुम्हारी झोपड़ी को तोड़ के फेंक देंगे, तुम्हारी हत्या कर देंगे, ऐसे बहुत सारी बातें कही। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उन सबको चुप करा दिया। वहां पर कीर्तन पार्टी आई, श्री नित्यानंद प्रभु और गदाधर पंडित वगैरह सब आए, और उस कीर्तन के बीच में श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री चंद्रशेखर आचार्य जो उनके मामा थे उनको कहा कि जाओ और मेरे संन्यास की सारी तैयारी करो। और वो जब संन्यास की सारी तैयारी की तो बड़े ही एकदम बड़े दुखी रूप से चंद्रशेखर आचार्य एक नाई को लेके आते हैं बार्बर को और वो चैतन्य महाप्रभु को देते हैं। और चैतन्य महाप्रभु उस नाई को कहते हैं कि आप मेरे बाल काटिए, तो नाई उसको बाल काटने के लिए नहीं जाता। तो चैतन्य महाप्रभु वापिस उनको कहते हैं जस्ट शेव माई हेड, केवल आप मेरे बाल उतार दो। तो वो नाई का हाथ चलता नहीं है, तो कई बार वो उनसे प्रार्थना करता है, नीचे गिरता है और वो कहता है कि मैं एक सिंपल नाई हूँ, अगर मैं आपके बाल काटूंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा ना, मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु उनसे कहते हैं कि ये वो आखिरी बाल हो गए जो तुम काटोगे, उसके बाद तुम्हें बाल काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और तुम सीधे गोलोक वृंदावन में पहुंच जाओगे। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने उसको भी कन्विंस करके और बाल काटे। तो जिस तरह से बाल उन्होंने काटे उसके बाद सारे के सारे लोग रो रहे थे, सिर्फ चैतन्य महाप्रभु हरि बोल हरि बोल इस तरह से भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके नृत्य करके वह गए। उन्होंने स्नान किया और अपना ड्रेस चेंज करके वापस से आए और केशव भारती महाराज के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने कहा कि हे केशव भारती महाराज कल रात को मैंने एक स्वप्न देखा और उस स्वप्न में मैंने ये मंत्र सुना और वह मंत्र संन्यास का केशव भारती महाराज के कान में पहले चैतन्य महाप्रभु ने कहा। इसका मतलब है कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड श्री चैतन्य महाप्रभु ने पहले अपने गुरु को दीक्षा दी केशव भारती महाराज को और वही केशव भारती महाराज ने कहा कि यह मंत्र बहुत अच्छा है और यही मंत्र मैं तुमको संन्यास के रूप में दूंगा। और फिर उन्होंने वही मंत्र श्री चैतन्य महाप्रभु के कान में कहा और फिर उन्होंने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु का जब संन्यास हुआ तो उनको कुछ नाम मिलना चाहिए, तो मैं क्या नाम दूंगा भगवान को, मैं क्या नाम दे सकता हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं भारतीय संप्रदाय से हूँ तो मैं ये नाम नहीं देना चाहता। और फिर उन्होंने कहा कि हे भगवान तुम स्वयं कृष्ण हो इसलिए तुम्हारा नाम है श्री कृष्ण, और क्योंकि तुम कृष्ण की चेतना लेके इस लोगों की चेतना को जगाने के लिए आए हो इसलिए तुम्हारा नाम होगा श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य भगवान की। तो चैतन्य महाप्रभु को नाम दिया और फिर वो कीर्तन करने लगे और इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने एक डंडा दिया और कमंडलु दिया और वह कमंडलु और डंडा लेके उन्होंने कहा कि जाओ और अभी तुम हरिनाम का प्रचार करो और हरिनाम संकीर्तन करो। और इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु सारे जीवों का उद्धार करने के लिए उन्होंने अपनी माँ का परित्याग किया, एक तरह से अपनी पत्नी का परित्याग किया, अपने सारे जो मित्र थे उनका परित्याग करके और अपने हाथ में एक डंडा और एक कमंडलु लेके और वह भगवान श्री कृष्ण चैतन्य वह सभी जीवों का उद्धार करने के लिए आए। और जिस तरह से वह अपना कमंडलु और डंडा धारण किए थे, हमने ड्रामा किया था, उसमें ड्रामा में भक्त लोग गाने लगे, जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन त्रिभुवन करे जाय चरण वंदन, नीला चल शंख चक्र गदा पद्म धर नदिया नगर दंड कमंडलु कर। कहते नीला चले शंख चक्र गदा पद्म धर, शंख चक्र गदा पद्म जगन्नाथ के हाथ में है, भगवान श्री कृष्ण के हाथ में है और नदिया नदिया नगर में वो क्या है कमंडलु कर, अपने हाथ में कमंडल लेके आए। नीला चले शंख चक्र गदा पद्म धर नदिया नगर दंड कमंडलु कर, के हो बोले पूरबे रावण बधिला गोलो के वैभव लीला प्रकाश करिला, श्री राधा भावे गोरा अवतार हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार, वासुदेव घोष बोले कोरी जोड़ हाथ जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ, 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 जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन तोरे जार चरण वंदन, जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन त्रिभुवन तोरे जार चरण वंदन, चले शंख चक्र गदा पद्म धर नदिया नगर दंड कमंडलु कर, नीला चले शंख चक्र गदा पद्म धर नदिया नगर दंड कमंडलु कर, के हो बोले पूरबे रावण बधिला गोल के वैभव लीला प्रकाश करिला, श्री राधा भावे रे गौर अवतार हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार, वासुदेव घोष बोले करी जड़ हाथ जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ, 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 जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। वे भगवान श्री कृष्ण वे जगन्नाथ उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके सभी को भगवान कृष्ण प्रेम के बारे में बताया और कृष्ण प्रेम का वितरण किया। तो भगवान को कोई आवश्यकता नहीं थी संन्यास लेने की, लेकिन हम सभी को कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए भगवान आए और संन्यास ग्रहण किए। तो आज का जो ये दिन है और कल का दिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हम सभी भक्तों से निवेदन करते कि जितना हो सके उतना भगवान का हरिनाम का संकीर्तन कीजिए, जब कीजिए। कल कई लोगों को छुट्टी है, हम जब कर सकते हैं और कल जब करने के लिए हम सुबह एकत्रित होंगे, तो जो भक्त चाहते हैं वो जब करने के लिए आ सकते हैं सच्चिदानंद प्रभु के घर पे। चैंटिंग सेशन होगा सुबह 4 से 6 बजे और आई थिंक प्रवीण प्रभु के घर पे भी होता है, प्रसादेश्वर कृष्ण प्रभु के घर पे। तो जो भक्त वहाँ जाना चाहते हैं वो वहाँ जा सकते हैं, जो यहाँ आना चाहे वो यहाँ आ सकते हैं। तो सभी से निवेदन है कि भगवान श्री कृष्ण का ये जो हरिनाम संकीर्तन है उसमें सहभागी होइए। और एक और अनाउंसमेंट ये है कि कल आज शाम को हिज ग्रेस कृतु प्रभु कृतु महाराज जो है वो श्रीला प्रभुपाद के जो एक शिष्य है वो यहाँ पर आने वाले हैं। तो शशि प्रभु के घर पे बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग फ्लैट नंबर 23A सेकेंड फ्लोर ए विंग, उसमें कार्यक्रम है शाम को 7 बजे। तो सभी से निवेदन है कि आप ये कृपया So we will call devotees at 7 o'clock, whatever time the program starts is okay. So we request आप 7 बजे आ सकते हैं, लेकिन फिर से एक बार आप जब उस बिल्डिंग में आए तो ध्यान रखिए किस तरह से आना है, तिलक धोती कुर्ता वगैरह पहन के आप मत आइएगा, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है। और भगवान को हम भोग लगा सकते हैं, प्रभु जी कह रहे हैं तिल गुड़ वगैरह बना के भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। सो इतना ही कह मैं यहाँ पर विराम दूंगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कोई योग्यता नहीं है और बोलने के बारे में, लेकिन फिर भी क्योंकि आज कल का जो दिन है वो चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया और अभी हम साउथ इंडिया यात्रा में गए थे जहाँ पर संन्यास के बाद चैतन्य महाप्रभु गए थे, तो मैंने सोचा कि ये अच्छा होगा भक्तों को इसके बारे में बताएंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम का जय। श्री प्रभुपाद की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, गौर प्रेमानंद।